नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधिसा नायके के साथ पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की भी घोषणा की। डेनमार्क का सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव जीतने में विफल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बांग्लादेश में निहत्थे लोगों के खिलाफ इतिहास का सबसे जघन्य नरसंहार किया। अब समाचार विस्तार से। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि खुला, सुरक्षित और सुलभ होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। श्री मोदी ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की है, जिसमें वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में वक्तव्य में पश्चिम एशिया संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की है। उन्होंने राज्यों से केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस संकट से बचने के लिए टीम इंडिया के रूप में कार्य करने की अपील की। युद्ध के गंभीर दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 सशक्त समूह युद्ध के परिणामों से निपटेंगे और ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति पर नीतियां बनाएंगे।
भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति को एकमात्र समाधान बताते हुए भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ईरान, इसराइल और अमरीका सहित सभी पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में है, जिससे तनाव को कम किया जा सके।
युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है।
इस बीच सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है। सभी संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है।
सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है, विदाउट एनी कट।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने दोहराया कि किसी भी बंदरगाह पर भीड़भाड़ नहीं है और सरकार समुद्री व्यापार को निर्बाध रूप से जारी रखने का पूरा प्रयास कर रही है।
गल्फ क्षेत्र में मौजूद सारे भारतीय जहाज और सारे भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में कोई भी समुद्री घटना दर्ज नहीं हुई है। कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर पाइन गैस और जग वसंत, इन दोनों जहाजों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। पाइन गैस में 45,000 मेट्रिक टन एलपीजी है और वो अराइवल 27 मार्च को संभावित है। वहीं दूसरी एलपीजी कैरियर वेसल जग वसंत है, जिसमें करीब 47,600 मेट्रिक टन एलपीजी है और उसकी अनुमानित आगमन तिथि 26 मार्च है।
विदेश मंत्रालय में खाड़ी देशों के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकसित हो रही स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की सहायता और समर्थन के लिए मंत्रालय का समर्पित नियंत्रण कक्ष कार्यरत है। परिचालन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर एयरलाइंस भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमित गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करना जारी रखे हुए है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से बातचीत की है और क्षेत्र में जारी हमलों और शत्रुता को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मैक्रों ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में अस्वीकार्य हमले रोकने, ऊर्जा और नागरिक अवसंरचना की सुरक्षा बनाए रखने तथा हुर्मुज जल डमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ईरान से सद्भावना के साथ बातचीत में शामिल होने का भी आह्वान किया। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। डेनमार्क में सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव जीतने में विफल रहा है। ये चुनाव अनिर्णायक परिणाम के साथ समाप्त हुए, जिससे प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन का भविष्य अनिश्चित हो गया है। एक रिपोर्ट।
चुनाव प्रचार अभियान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड संबंधी महत्वाकांक्षाओं के बजाय आम जनता से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। आधिकारिक परिणामों के अनुसार प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन की मध्य वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 2022 के पिछले चुनाव की तुलना में नुकसान हुआ है। वहीं उनकी सरकार में शामिल अन्य सहयोगी दलों को भी विपरीत परिणाम मिले हैं। संसद में ना तो वामपंथी और ना ही दक्षिणपंथी गुटों को बहुमत मिला है। इससे अनुभवी विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड्स लोके रामुसेन किंग मेकर की भूमिका में सामने आए हैं। उनकी मध्यमार्गी मॉडरेट पार्टी यह तय करने की स्थिति में है कि फ्रेडरिकसन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं। इससे पहले फ्रेडरिकसन ने चेतावनी दी थी कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने का कोई भी अमरीकी प्रयास नाटो के अंत का संकेत हो सकता है। हालांकि बाद में तनाव कम हो गया। डेनमार्क की संसद में कुल 169 सीटें हैं, जिनमें से 175 डेनमार्क से चुनी जाती हैं, जबकि ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड्स से दो दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आज नरसंहार दिवस पर शोक व्यक्त किया है। ये दिवस 25 मार्च 1971 के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पीड़ितों के सम्मान में देश में विभिन्न स्थानों पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
देश भर में आयोजित कार्यक्रमों के तहत रात 10:30 से 10:31 तक एक मिनट का प्रतीकात्मक ब्लैकआउट रखा जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और आपात सेवाएं शामिल नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थानों में चर्चा कार्यक्रम हो रहे हैं, जबकि बड़े शहरों में नरसंहार और मुक्ति संग्राम को उजागर करने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन और फोटो प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। मृतकों की याद में मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं की जा रही है और सम्मान के तौर पर रोशनी सीमित रखी गई है। नरसंहार और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार और स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें लिबरेशन वॉर म्यूजियम के कार्यक्रम भी शामिल है। इन आयोजनों के माध्यम से बांग्लादेश पीड़ितों को श्रद्धांजलि देता है और 1971 के नरसंहार को वैश्विक मान्यता दिलाने की अपनी मांग को दोहराता है। नवल संघ परमार, विश्व समाचार, ढाका।
वर्ष 2025 में पाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश रहा। इसके बाद बांग्लादेश और ताजिकिस्तान का स्थान है। स्विट्जरलैंड की एक वायु गुणवत्ता कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरादिसा नायके के साथ पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की भी घोषणा की। डेनमार्क का सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव जीतने में विफल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बांग्लादेश में निहत्थे लोगों के खिलाफ इतिहास का सबसे जघन्य नरसंहार किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।